اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی متی حروفیک یا مولا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد. عزاداران امام، ایام فاطمیہ چل رہے، اللہ شہزادی کے دشمنوں پر عذاب نازل کرے انشاءاللہ اور قاتلوں پر. سیکنڈ شہادت بہت قریب ہے، 90 ڈیز والی. پہلی شہادت میں کثرت سے ماشاءاللہ مجلسیں ہوئی، بی بی ان مجالس کو قبول کرے سب کی پوری دنیا میں. اور اب جو ایام آ رہے، یہ سارے ایام، یہ سارے دن غم کے دن ہیں، اور اللہ ہم کو توفیق دے، بی بی ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر شہزادی کونین کریں، کہ جو ذکر فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو بہت انتظار ہے اسی لمحے کا، کہ ظہور ہو، جلدی ظہور ہو، اور میں خون شہزاد محسن کا بدلہ لوں. آج میرا 16th لیکچر ہے، 16th میرے مولا کے حالات کے اوپر. مسلسل 15 لیکچرز میں آپ نے سنا، اور آج 16th لیکچر فرزند زہرا کے حالات کے لیے. 1442 ہجرا 2020 کے یہ مجالس ہیں. 8 جنوری 2021 کا یہ لیکچر ہے. دوستو، میں نے جن کلمات سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، آپ سب جانتے کہ یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں. وہ دعا جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے غیبت امام میں، یہ ہائر اوکلٹیشن سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا، ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، یہ سب سے اچھی دعا ہے. پڑھنا چاہیے، ہر فرائیڈے پڑھیں، ہر عید میں پڑھیں، غدیر میں پڑھیں، رمضان کی عید ہو، عید الضحیٰ، یہ ساری عیدوں میں حکم یہی ہے کہ یہ دعا کو تلاوت کرو. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ یہ لیکچر سنا جا رہا، اور جو میسیجز آ رہے کہ جسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، میرا مقصد ہی یہ تھا کہ تھوڑی سی انفارمیشن، ایک بریف ایٹ لیسٹ انفارمیشن ہماری یوتھ میں پہنچے کہ وہ لوگ امام سے قریب ہوں. یہ بہت خوشی کی بات کہ کثرت سے لوگوں نے سلامتی امام زمانہ کی نماز شروع کر دی. شکر ہے پروردگار کا. میں تو کہتا ہوں نا، ایک نے بھی اگر شروع کر دی تو میرا مقصد پورا ہو گیا. لیکن کثرت سے ماشاءاللہ یوتھ نے نماز 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح سلامتی امام زمانہ کی نماز شروع کی، جس سے کافی فرق پڑتا کہ ایک امام سے رشتہ بنتا، اور اللہ تمہاری سلامتی کے لیے امام دعا کرتا کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے، اس لیے کہ تم امام کی سلامتی کی دعا کر رہے. اور لوگوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا، زیارات، جتنی زیارات پڑ رہے سب کو امام کو ہدیہ کر رہے، اور ان کی مادر گرامی بی بی نرجس خاتون کو بھی ہدیہ کر رہے. دوستو، لاسٹ ویک جہاں بات پہنچی تھی سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں، میں نے کچھ سائنس بتائے، لیکن آج میں ان سائنس کو روک رہا، اور پھر جب انشاءاللہ حالات ظہور پڑھوں گا تو اس میں وہ سائنس پھر آ جائیں گی. جو نئے سائنس ہیں وہ انشاءاللہ وہ علامات کہ جو ظہور سے پہلے ہوں گے، 9 مہینے پہلے، بعض روایتوں میں 9 مہینے ہیں، بعض میں 7 مہینے، 7 منتھس بیفور ظہور امام ایک ڈراسٹک چینج آئے گا پوری دنیا میں. ایک جغرافیکلی بھی آئے گا اور ظاہری طور پہ بھی آئے گا. ظہور سے پہلے کے جو حالات ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ سائنس، وہ بھی ایک سائنس آف ری اپیئرنس، جیسے یہ وائرس چل رہا، मैं ये नहीं बोलता कि यही वो वायरस है कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा, बट आप चलिए बोलते कि पॉसिबिलिटी है कि यही वो वायरस हो सकता, हो सकता। अल्लाह हमारी दुआ ये है कि यही बन जाए वो जो साइंस ऑफ रीअपीयरेंस। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बोलता कि जितने साइंस हैं वो अपनी जगह पर, जितने साइंस हैं, मैं किसी से इनकार नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे कोई राइट नहीं है इनकार करने। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा कि हम उस अल्लाह को मानते हैं, हमारा बिलीव उस खालिक कायनात के ऊपर है जो खादिर मुतलक है, विदाउट एनी साइन। मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, विदाउट एनी साइन अल्लाह चाहे तो अपने इस बंदे का जोर अब करवा सकता, इस वक्त करवा सकता, हमारा अल्लाह मजबूर नहीं है। जहूर यकीन है, ये याद रखना, या जहूर यकीन है, आना इमाम का यकीन। एक दिन भी अगर कयामत में रह गया, डे ऑफ जजमेंट में, तो इमाम आएगा। पहले जैसे मैंने कहा कि अभी कयामत का आने का तस्वूर ही नहीं है हमारे पास, डे ऑफ जजमेंट अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। सबसे पहले जहूर इमाम इंशाल्लाह होगा, उसके बाद इमाम की कंप्लीट हुकूमत होगी। अच्छा, जैसी जहूर होगा फौरन इमाम की हुकूमत नहीं होगी, इमाम आने इस वक्त दुनिया जुल्म और जोर में भरी हुई होगी। जब इंशाल्लाह इमाम आएगा उस वक्त जुल्म अपने कमाल पे होगा, कुफर अपने कमाल पे होगा, शिर्क अपने कमाल पे होगा। लेकिन इमाम आके 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल तक इमाम जिहाद करता रहेगा। किन किन चीजों से जिहाद करेंगे? जुल्म को खत्म, सबसे पहले जुल्म को खत्म करेगा, उसके बाद ये कुफर को खत्म करेगा, फिर ये सारे वो जो जालिमीन होंगे उनसे एक एक का बदला लेगा। और जितने लोग आएंगे, और जैसा मैंने पहले कहा था कि सुफियानी रीजन बनेगा जहूर इमाम का, सुफियानी एक शख्स के बारे में कहा गया कि एक ऐसी एक शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो पैदा होगा या पैदा हो गया, वी डोंट नो। उसकी जो साइन बताई गई वो ये है कि ग्रीन कलर की उसकी आईज होंगी, उसके चेहरे के ऊपर, उसके फेस के ऊपर स्पॉट्स होंगे, दाग होंगे, और वो फलस्तीन से खुरूज करेगा। फलस्तीन, आज का फलस्तीन नहीं, इमाम के जमाने में जो रिवायतें छठे इमाम से है, मौला से है, अल्लाह के रसूल से है, कई मासूमीन से रिवायतें, तो ये जो फलस्तीन, उस जमाने का जो फलस्तीन था उसमें आज का इजराइल भी है, आज का लेबनान भी है, आज का जॉर्डन भी है, इन्हें चार ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है ये सारी मिला के एक फलस्तीन था उस जमाने का। तो आज का फलस्तीन नहीं है, चाहे कहीं से भी, इजराइल से भी आ सकता, लेबनान से भी आ सकता, जॉर्डन से भी आ सकता, ये सारे जो, तो सुफियानी रीजन बनेगा, सुफियानी रीजन। आज मैं डिटेल में नहीं जा रहा सुफियानी के, मैं सिर्फ आपको बता रहा है कि सुफियानी एक शख्स है जो रीजन बनेगा, जो खुरूज करेगा और सीरिया पर जाकर हुकूमत करेगा। उसके बाद इंशाल्लाह अभी मैं जब एक दो लेक्चर्स के बाद ये वाकया आ जाएंगे, बस मैं आज इसको खाली आपको एक हिंट कर रहा कि साइंस ऑफ रीअपीयरेंस में सबसे पहले सुफियानी का है जो रीजन बनेगा इमाम के जोर का, उसी के जमाने में इमाम आ जाएगा, और वो 9 महीने हुकूमत करेगा, गवर्नमेंट करेगा, उसकी हुकूमत चलेगी सीरिया में, और वो मदीने को और मक्के मदीने को ताराज करेगा, मदीने को तबाह करेगा उसका लश्कर आके, उसके बाद फिर मक्के की तरफ आएगा, इधर इमाम इंशाल्लाह जुहूर करेंगे। तो 9 मंथ्स बिफोर जुहूर इमाम दुनिया में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा हर चीज में, इवन सोलार एक्लिप्स, इवन लूनार एक्लिप्स, इवन जंग। तो इमाम के जुहूर से पहले जो बताया गया कि जंग है, जंग होगी, एक बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी कि जिसमें जंग अजीम कहा गया, रिवायतों में है जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया जंग अजीम होगी। अब वो जंग अजीम क्या होगी? वर्ल्ड वॉर हो सकती। आइंस्टाइन जिसने आइटम की थ्योरी को पेश किया था, टाइम बॉम्ब जो था, आइटम बॉम्ब जो था, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो आइंस्टाइन से ये पूछा गया था कि ये बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुमने जो ईजाद किया बॉम्ब, उससे जंग खत्म। कैन यू टेल अस कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कौन से और आर्म्स एंड एमिनेशन इस्तेमाल होंगे? आज दुनिया 45 में ये तरक्की कर गई, अगर जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो कौन से चीजें इस्तेमाल की जाएंगी? यू नो व्हाट आइंस्टाइन आंसर? आइंस्टाइन ने कहा कि मैं जो देख रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जंग आइटम से खत्म होगी, टाइम से, बॉम्ब से खत्म होगी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में आई कांट से एनीथिंग, Regarding third world war, I can't say anything. But I can tell you about the fourth world war. I can tell you about the fourth world war. तो लोगों ने कहा ओके बोल बच्चे चौथी जंग में क्या होगा. तो उसने कहा कि दुनिया इतनी तबाही की तरफ चली जाएगी कि दुनिया वापस स्टोन एज में आ जाएगी, पुराने जमाने में आ जाएगी. थर्ड वर्ल्ड वॉर में इस तरह टेक्नोलॉजी फेल होगी, एक दूसरे से टकराएंगे कि दुनिया पलट के स्टोन एज में आ जाएगी. अगर अब स्टोन एज में अगर आ रही दुनिया तो जब जुल्फिकार के लिए काम है. अब आप इंसान से बोलो, अगर आज मैं ये बोला आपको इस लेक्चर में कि मौला जुल्फिकार लेकर आएंगे और जुल्फिकार ही लेकर आएंगे, मौला को मिसाइल लेके नहीं आएंगे, मौला को थियरी लेके नहीं आएंगे, मौला के हाथ में जुल्फिकार होगी. अब आप बोलिए अगर मैं जुल्फिकार बोलूं तो क्यों या आयू इसको एक्सेप्ट करेगा. आज के जमाने में तलवार से कोई जंग होती है? आज के जमाने सवाल ही नहीं है कि तलवार लेकर कोई आए तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक. इमाम जुल्फिकार लेकर आएंगे. तो अगर दुनिया पलट के स्टोन एज में जाएगी तो जब जुल्फिकार काम आएगी, आप समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा, स्टोन एज में आ जाएगी तो उस वक्त जुल्फिकार एक जदीद हथियार माना जाएगा. तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कंप्लीट डिस्ट्रॉय, कंप्लीट. अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारे ईमान का बचा के रखे. इसलिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जिससे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, छठे इमाम की रिवायत कि इमाम ने थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा, जंगे अजीम जिससे दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन खत्म हो जाए. दोस्तों इतनी आसान बात नहीं, आप मैं आसानी से पढ़ रहा, आप आसानी से सुन रहे. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन फिनिश हो जाएगा, दुनिया सिमट के सिमट कर मुख्तलिफ शहरों में आ जाएगी. ज्यादा रिवायतें मिडिल ईस्ट की है कि दुनिया सिमट के मिडिल ईस्ट में आ जाएगी. इतनी दवाई है कि मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा. इस वक्त मैं हैदराबाद में नहीं हूं, मैं गुजरात में महुआ शहर है वहां पर मदरसे पढ़ने आया हुआ, वहां से ये लेक्चर पढ़ा, ये अपने इमाम के लेक्चर पढ़ा. तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन का खत्म होना लाजिम. एक 2/3 में खत्म होगा, एक वबा के जरिए खत्म होगा, ये वायरस के जरिए खत्म होगा. और वायरस के जरिए एक कसीर मौत होगी. सफेद रंग का वायरस भी है, सुर्ख रंग का वायरस भी. आई डोंट नो सुर्ख रंग का पता नहीं किस अंदाज से हो रहा. कि कोई वायरस के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो कोविड आया ये वही है. आई एम नॉट टेलिंग यू, ये कोई गलत नहीं समझे, या स्ट्रेन जो आया वो है नहीं, पता नहीं कौन सा वायरस और आने वाला है कि जिससे एक कसीर मौत हो पूरी दुनिया में. आज पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई, पूरी दुनिया, यू नो वेरी वेल कि किस तरह से लॉकडाउन हुआ, किस तरह से दुनिया एक जगह आकर रुक गई. तो उसी तरह का आगे इमाम के जोहर से पहले हालात ऐसी तेजी से बदल. आप इंसाफ से बोलो, आज पूरी दुनिया में कहीं पीस है? कोई न्यूज पेपर उठा के देखे, कोई चैनल उठा के देखे, कहीं भी पीस है का जुड़िए भी एक साइन है कि जोहर से पहले दुनिया से सुकून खत्म हो जाएगा, पीस खत्म हो जाएगा, एब्सोल्युटली खत्म, जीरो हो जाएगा. आज हर आदमी स्ट्रगल कर रहा, एक लड़का हो एक लड़की हो, शादीशुदा हो बैचलर, कोई मुल्क में कहीं आप बोल सकते हैं नहीं यार वहां पे बड़ा पीस है, सुकून. ये बहुत ही, ये भी एक अलामत है साइंस ऑफ रीअपीयरेंस में, ये भी है कि दुनिया से सुकून खत्म हो जाए. और एग्जैक्टली आज वही है कि आप रात में सो रहे पता नहीं सुबह में क्या होने वाला है. एक दिन में यूके में 55,000 पॉजिटिव केसेस हुए लास्ट थर्सडे. आप सोचो 55,000 यार, एंड यूके इज वेरी स्मॉल. तो कितना डेंजरस ये हालात चल रहे, ये सारी की सारी साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम में. बस इस वक्त अपने आप को इमाम से इतना मजबूत करो, जस्ट स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए इस वक्त. इसलिए कि अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप तुम्हारे, तुम गफलत ही में रहे, अरे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो बड़ा चाहने वाला, ये जहन से निकलना. मैंने अभी हैदराबाद के कुछ मजालिस में बोला है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव की मजालिस, ये जो बीमारी है ना, बीमारी है, डिजीज है, मुझे क्या है. कभी आप इंसाफ से बोलो, रात में सोने से पहले आप सोचते, हम सोचते कि अल्लाह क्या होने वाला है, पता नहीं अगर मौत आ जाए तो मेरे गुनाह माफ होंगे. कभी रात में सोने से पहले भी से कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, हमारे जहनों में नहीं है ये बात, हमारे तस्वुर में नहीं है कि मैं भी गुनाहगार. और यही हालात बदलेंगे, यही हालात होंगे इमाम के जोर से। अगर आज आप पूरा जनरल व्यू करो, पूरी दुनिया की तरफ देखो, कोई बोलता है? मैं ये नहीं बोल रहा कोई नहीं बोलता, 10% तो बोलते होंगे। का हुक्म क्या है कि सोने से पहले जस से अल्लाह कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। दूसरों के गुनाह मत देखो कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। हुक्म क्या है, अपने पहले देख लो। गुनाह के लिए कहा गया खुद माफी मांगो पहले अपनी। आपको अजीब बात लग रही है, अब सुने आप, जितनी दुआएं रिस्क की दुआ हो, बीमारी की दुआ हो, सेहत की दुआ हो, बिजनेस की दुआ हो, शादी की, जितनी दुआएं सब दूसरों के लिए मांगो। पहले दूसरों के लिए मांगो फिर अपनी। कोई दुआ ऐसी नहीं कि तुम जस से अल्लाह तुम मुझे दे, पहले दूसरों के लिए। तुम बीमार हो दूसरे की सेहत, तुम परेशान हो दूसरे की परेशानी, तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा दूसरे का बिजनेस के लिए काम, तुम्हारा रिस्क में प्रॉब्लम है दूसरे, तुम्हारे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, तुम दूसरी लड़की के लिए दुआ करो कि जो भी प्रॉब्लम है उसको से, हर दुआ के लिए कहा गया दूसरों के लिए दुआ करो। सिर्फ एक चीज के लिए कहा गया कि पहले अपने लिए दुआ करो, वो है गुनाह। कहा कि तुम अपने लिए पहले दुआ करो कि तुम तो इस ये बोलो कि अल्लाह मुझे माफ करो, पहले मुझे माफ करो। क्यों? इसलिए कि तुमको तुम्हारे गुनाह मालूम है, सामने वाले के गुनाह नहीं मालूम। देखो इस्लाम क्या रिलीजन है, कैसे इस्लाम पेश करा, कैसे प्रेजेंट करा कि मोमिन के साथ कैसे रहना का। हर गुनाह का तुमको मालूम है कि तुमने गुनाह क्या किया, बेशक अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। सामने वाले के कोई गुनाह नहीं मालूम है, सामने वाला हो सकता तुमसे ज्यादा वो छुपी हुई उसकी नेकियां उसकी इबादतें, तो तुम अपने लिए पहले गुनाहों की माफी मांगो। आप इंसाफ से बोलो, आज कोई मांगता? आज कोई मांगता? हम सोने से पहले बोलते हैं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे अगर इफ आई डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग। ये कहा कि ऐसे हालात बदल जाएंगे। एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसे हालात बदल जाएंगे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया श्रिंक हो जाएगी, दुनिया से सुकून खत्म हो जाएगा। इस्लाम रहेगा कैसा रहेगा? इस्लाम चेहरों पे इस्लाम है, लिबास इस्लाम का है, खूबसूरत मस्जिदें बनाई जाएंगी इमाम के जोर से। मैं वही साइंस वही बताएगा आपको, जो आलिम लोग होंगे, जो शरीफ लोग होंगे, जो आलिम लोग होंगे वो घरों में बैठ जाएंगे और ये चीख। उसके बाद आप देखो कहा कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगा अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसकी माशरे में इज्जत होगी। और जो अमरे बिल मारूफ करेगा, जो अच्छी बातों को रोकेगा, उसको उस पर लोग एतराज करेंगे। आज नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा। जब खुल्लम खुल्ला आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो, फया ले तेरी कुंतो माँ को फाफुजा बोलो, इंसाफ से बोलो। आज के दौर में अगर कोई गुनाह करता है अल्लाह माफ करे, कोई मिसाल की तौर पर इंडियन मूवी देखता है हम उसको बुरा समझते, आज अगर कोई गाना सुनता है हम उसको गुनाह समझते, आज अगर खुल्लम खुल्ला कोई शेव करता है दाढ़ी को हम उसको गुनाह समझते, आज अगर लड़की बेपर्दा फिरती है तो हम माशरे में बोलते हैं ओ तुम बेपर्दा फिर तो हमारे घर नहीं आना या मेरे बाजू नहीं पड़ना, कोई उसकी कोई इज्जत जाती है, कोई टोकता है। अरे कोई मिक्स गैदरिंग्स में शादी करता है अपनी बच्चियों की, हर आदमी जा रहा टेबल पे बैठ रहे, मिक्स गैदरिंग में बैठ के बात कर रहे, कोई बोलता है करेज है जब कार्ड मिल रहा, यू नो वेरी वेल के ये मिक्स गैदरिंग, तुम बोलते हो कि यार तुम मिक्स गैदरिंग कर रहे आई एम नॉट कमिंग, कोई बोलता है? किसी में इतना करेज है? एग्जैक्टली जो इमाम ने कहा 1400 साल पहले कि मेरे बेटे के जुहूर से पहले हालात इतने बदल जाएंगे कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माशरे में इज्जत होगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और जो गुनाह नहीं कर रहा, जो एहतियात कर रहा, उस पर लोग एतराज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। समझना मेरे बेटे के जुहूर का वक्त बिल्कुल खरीब आ गया। खुल्लम खुल्ला मैरिजेस हो रहे, मिक्स गैदरिंग्स हो रहे, म्यूजिक पार्टीज होती, बेहिजाब फिरते, ड्रिंक करते खुल्लम खुल्ला। वो आए तो आप उसको बोलते, आप उसको सोशल वर्कआउट करते, आप उसको बोलते इतनी हिम्मत है खाली इतना बोलने की कि भाई दिस इज गुनाह, व्हाट आर यू डूइंग, हिम्मत ही नहीं है, हम बोलते ही नहीं।
क्यों नहीं बोल सकते? यही हालात हूं एग्जैक्टली जो मौला ने कहा उस वक्त जब मौला ने कहा, उस वक्त जब मौला ने यह बात कही, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मौला खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले की माशे में इज्जत कैसे होगी। आज देखो आप खुल्लम खुल्ला मैं गीबत कर रहा, कोई किसी में दम है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट खा रहे। आपसे मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपया लिया और बोलेंगे हमें 1,10,000 देना, हर महीने इतने पैसे देना, 10% पे तुम इंटरेस्ट खा रहे, और फिर तुम बोल रहे कि तुम इमाम के चाहने वाले का। एग्जैक्टली हालात ऐसे 180 डिग्री हालात बदले हुए आज। अगर आज आप देखें थोड़ा गौर करें और किताब ले, मैं कह रहा ना हयातुल खुलूब अल्लामा मजलिसी नजमुल हसन करारवी 14 सितारे, आप ये किताब ले, लास्ट पार्ट में जाए इमाम के, इमाम के हालात के बाद फिर और लास्ट पार्ट में जाए, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस लिखा हुआ है। और एक अल्लाह मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी किताब है साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम डिटेल में। 3 किताबों के रेफरेंस देना, ये तीनों किताबों में हाथ में पेन लेना या पेंसिल, किताब को ऐसा खोलो, खोल के साइंस ऑफ रीअपीयरेंस पढ़ो, अलामात ज़ुहूर पढ़ो कि इमाम के ज़ुहूर से पहले क्या हालात। तुम सिर्फ टिक करते जाना, अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। जो मैं एक स्टूडेंट हूं, जो मेरा एक थोड़ा सा रिसर्च, 90% अलामात हो गए, 90% साइंस ऑफ रीअपीयरेंस हो, आखिरी जमाने के और एक कई अलामतें बताओ कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं रहेगा, लड़की में लड़के में औरत में मर्द में कोई फर्क नहीं रहेगा, औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, मर्द औरतों के लिबास पहनेंगे, आज नहीं है, औरतें मर्दों की शक्ल बनाएंगी, मर्द औरतों की शक्ल बनाएंगी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, कान में टॉप्स हैं, रिंग्स हैं, बाल बड़े हुए हैं, जीन्स में है, पीछे से आपको कुछ नजर ही नहीं आता। औरतों को देखो क्या लिबास, मैं बहुत एहतियात, मिंबर का तकद्दस है, लड़का लड़की लड़की फिर मैं बहुत एहतियात से पढ़ना पड़ रहा हूं कि कैसे कैसे लिस्बियन के बारे में, बस इससे ज्यादा नहीं बोलता, जो समझ रहा वो समझ रहा कि कसरत से लिस्बियंस हो जाएंगे। गैस के बारे में मैंने पूरी मंजिल 2 साल रिजी कॉलेज में मैंने बोला गैस के बारे में हमारी कम्युनिटी में, यार अब कोई कुछ बोल रही नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं है बोले कि ये गुनाह कबीरा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। गैस कॉमन हो जाएंगे, कोई गे अगर आया तो आप बिठाते नहीं बाजू, कोई लिस्बियन आई तो आप बाजू बिठाते नहीं। मैं औरतों को बोल रहा, मर्दों को बोल रहा कि आखिरी जमाने के जो साइंस ऑफ रीअपीयरेंस वो देखे पड़े तो आपको हैरत होती। कहा कि अब आप सुनो, कहा कि इस तरह, ये मेरे मौला का जुमला, मेरे मौला का जुमला कि लोग चलेंगे, लोगों के जिस्म में से घृणा की आवाजें आएंगी। समझ में आई बात? जब लोग चलेंगे, वॉक करेंगे, मिसाल दे रहा होता रास्तों पर घृणा की आवाजें आएंगी म्यूजिक की, तो लोगों ने कहा मौला क्या उस वक्त के जिस्म बदल जाएंगे? इमाम ने कहा नहीं बदलेंगे, यही रहेगा। क्या अंदर से कैसे आएगी आवाज, कैसे आएगी? आज आपके सामने नहीं, कुछ वॉक कर रहा, टेलीफोन जेब में, टेलीफोन जेब में क्या आवाज आ रही? इंडियन सॉन्ग की। जाहिरी तौर पे क्या नजर आ रहा? कोई चीज नजर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है इसके जिस्म में से आवाज आ रही। और एक बात बोलूं आपको, हैरत होगी, अभी तक इतनी अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में नहीं है। बोलता हूं, मुसलसल बोलता हुआ, मुसलसल बोलता हुआ रहा कि ये शैतानी अमल को अपने घरों से खत्म करो, अमल को खत्म करो, ये सेटिस्फाइड होकर मत बढ़ो। यही तो कह रहा कि ये जो नमाज भी है, रोजा भी है, सब आजादारी भी कर रहे, फिर ये नहीं कर सोचते कि यार ये गुनाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कम से कम सोचो रात में बिस्तर पे जाने से पहले बिफोर यू गो टू बेड जस्ट से वन वर्ड कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी एंड गिव अस तौफीक। बोलते हो नेवर। मैं क्यों बोलूं, मैं तो सबसे बड़ा नेक हूं, मैं तो मुझसे बड़ा नेक कौन है मेरे जहन में। ये इमाम बोल रहे कि चलेंगे तो उनके घरों उनके जिसम में से म्यूजिक की आवाज आई। आज आप देखो टेलीफोन सा और आपको हैरत को एक मोमिन का इंतकाल हुआ, एक मोमिन का इंतकाल हुआ, बेटा ग्रेव में खबर में उतरा लहद में तलखीन पन। प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी। औरत मरा, लड़की लड़का सबको बोला ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं वो नीचे उतरा और बाप को तलखीन पढ़ने के लिए दोनों शोल्डर्स को हिलाना था जो एक कॉमन चीज, पूरा मजमा ऊपर है। आप जानते हैं कि जब तलखीन होती हर आदमी नीचे रहता है, वेरी क्वाइट, बात भी नहीं करता, एक खौफ रहता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, नीचे रहता। उसने बस उसको शोल्डर पे उसने हाथ, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, बेटे ने दोनों बाप के शोल्डर्स पे ऐसा हाथ रखा और ऊपर से मौलाना ने कहा इस्माई फर्म, और नाम लिया गया सुन और समझ। जैसे ये कहा इसकी बॉडी में से इसका टेलीफोन रिंग हुआ और वो इंडियन सॉन्ग था। कहां पे? ग्रेव के अंदर। ऊपर से मौलाना ने कहा इस्माई फर्म फुला इब्ने फुला, फॉरन सॉन्ग रिंग हुआ और सॉन्ग बजने होने लगा, इंडियन टिपिकल इंडियन सॉन्ग। अब वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ, नीचे से आवाज ऊपर आ रही। मैं क्या बोलूं, ये डिजास्टर नहीं है तो क्या है? ये साइंस ऑफ रीअपीयरेंस का कैसा मस्त मिसाल है। अब वो लड़का पैनिक हुआ, पहले एक दो मिनट तो वो समझ ही नहीं सका कि क्या हो रहा, फिर एहसास हुआ कि उसी का टेलीफोन रिंग हो रहा। अब कभी इधर हाथ डालता, कभी इधर हाथ डालता। उसके बाद उसने टेलीफोन को निकाल के ऑफ किया, दो तीन मिनट तक टेलीफोन बजता रहा। पूरा पूरे लहर में तुमने क्या सुनाया बाप को? मैं जब मैंने मस्जिद पर मैंने यही कहा, बाबा तुमने क्या सुनाया बाप को? म्यूजिक लास्ट 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 जो वो जा रहा था उसके कानों में तुमने क्या आवाज दी? वो आवाज जो यजीद को पसंद थी, जालिम को, जिस आवाज को हुसैन ने रेस किया था। और आज हमारा माशा देखो कोई छोड़ता है अभी भी? कम से कम ये शहजादी की शहादत क्या, या मादरे हुसैन की, मादरे हुसैन की मजलूम बीबी की शहादत क्या, या इन अयाम में बेहतरीन गिफ्ट दे दो ये म्यूजिक। क्या बोलो बीबी, आज से मैं नहीं सुनूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। आज ही मैं मिंबर से बोल रहा, मिंबर से बोल रहा, आज ही मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जगह का नाम ये बोलता, दोनों कंट्रीज में वही है, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान दोनों वैसे इंगेजमेंट हुई एक लड़की के साथ, उसके मामूजाद भाई थे। लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना मैं पांच वक्त की नमाजी हूं, मैं पांच वक्त की नमाजी हूं, जिससे मेरी मां बाप ने एंगेजमेंट किया, मेरी मां के भाई का बच्चा या बहन का बच्चा पता नहीं कौन, उनके घर में म्यूजिक है, उनके घर में सॉन्ग्स है, उनके घर में मूवीज लगती है, और लड़के के टेलीफोन में सिर्फ गाने हैं। अब मैं पांच वक्त की नमाजी हूं, व्हाट यू वांट मी टू डू, हाउ कैन आई लिव विद हिम? अल्लाह का शुक्र है कि इस लड़की में इतनी बेदारी है। और वो लोग, मैं क्या बोलूं, सब शिया हैं, खुल्लम खुल्ला गुनाह है, खुल्लम खुल्ला इंडियन मूवी चल रही, खुल्लम खुल्ला सॉन्ग्स चल रहे, आखिरी जमाने की अलामत, साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम देखो, उसमें आपको क्या मिलेगा कि ऐसे हालात दुनिया के हो जाएंगे। उस जमाने में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मौला के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना खुल्लम खुल्ला गुनाह हो। मेरे बेटे के जुहूर से पहले जब हालात दुनिया के ऐसे हो जाए तो समझ जाना कि मेरे बेटे का जुहूर सबसे ज्यादा करीब है। आज एग्जैक्टली वही है, खुल्लम खुल्ला देखो। वो लड़की परेशान होकर बोली कि मौला व्हाट यू वांट मी टू डू? आई सेड व्हाई डोंट यू स्पीक टू योर मॉम, व्हाई डोंट यू स्पीक टू योर मदर, आई कांट से एनीथिंग फ्रॉम हियर, यू स्पीक टू योर मॉम। एंड एक्सप्लेन टू हर कि मैं तो नमाज की, उसके घर में तो इस्लाम नहीं, और इस्लाम क्या बोल रहा, बिकॉज दे आर वेरी रिच, इस्लाम क्या बोल रहा, दे आर वेरी रिच, फिर बोल रहा हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये कि पैसे वाला होना या पैसे वाली होनी, या लड़की पैसे वाली होना या लड़का पैसे वाला होना, दूसरी चीज स्टेटस होना, हसीन खूबसूरत होना, मॉडर्न होना। आज वही ये नहीं देखते कोई लड़का कोई लड़की, ये नहीं देखती कि उसके पास इस्लाम है। जिस घर में तुम बेटी को दे रहे हो, जिस घर में तुम एक बेटी को दे, एक बेटी को नहीं दे रहे, एक नस्ल को दे रहे, एक जनरेशन को तुम उनके हवाले कर रहे, जो तुम्हारी जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लड़की को, तुम्हारी जो लड़की है उसके पीछे पूरा जनरेशन है, पूरे तुम्हारे अमाल उस लड़की के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी आखिरत का सवाब उस लड़की के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी एक लड़की और उस एक लड़की के ऊपर तुम्हारे आखिरत के अमाल की एक्सेप्टेंस है, उसकी वो लड़की उसकी नस्ल जो चलेगी वो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे तो अजर तुम्हारा को मिलेगा। अगर तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड या बैठ के बोलेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अगर बैठ के वो दीन की बातें करेगा तो अजर तुमको मिलेगा, कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी से नस्ल चलिए। हम सोच रहे ये बात खुल्लम खुल्लम दे रहे, इसलिए कि हमको तो पैसे वाला चाहिए, हम ये चेक नहीं कर रहे कि उसके पास इस्लाम है। बाप अगर दीनदार नहीं होगा, बाप ये अगर ये अमल करेगा, वॉट यू थिंक, वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारी नस्ल की हिफाजत कैसे होगी, कैसे ईमान के लिए वो लोग काम करेंगे। एक सर बात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मैं क्या करूं, वक्त तेजी से निकलते जा रहा, ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स की मंदिश होगी, 45 मिनट्स का ये लेक्चर होता, आज पूरा लेक्चर इसी पे निकल गया कि प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है ये गुरु। सबसे पहले अगर तुम इंतजार है इमाम कर रहे, तुम बार बार बोल रहे अलजल 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 अलजल, तो अपने आप को गुनाह से बचाओ। ये बीमारी आज पूरी बात में म्यूजिक के बड़ी चली। और एक बात बोलना, आपको यकीन आएगा, पहला इमाम ने क्या कहा, चलेंगे तो उनके जिस्म से म्यूजिक की आवाज आएगी। उसके बाद बोलू कहा खाने काबा की दीवार से घिना की आवाज आएगी। यह हदीस कैसी लगी, खाने काबा की दीवार से आवाज आएगी तो लोग हैरत में पड़ गए, बेवशा शाह का मौला ये कैसे पॉसिबल है कि खाने का, अल्लाह अल्लाह को खाने काबा की ज्यारत नसीब करे। मैं आपको बोलूं इस उस जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो बड़े बड़े होते, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूज इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो उस जमाने में तस्वीर ही नहीं था कि म्यूजिक इस तरह दीवार में से कैसा आएगी, इंसान चलेगा तो कैसी आएगी। उस जमाने में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो मौला हदीस पैक, लेकिन मौला तो खयामत के हालात देख रहे थे कि कितने इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट होते जाएंगे होते जाएंगे। अब आप खुद बोलो, आज से 15-20 साल पहले लेट 90s में टेलीफोन था, मोबाइल था नहीं था, उस वक्त क्या होते थे, छोटे ट्रांसिस्टर्स होते थे। लेकिन अब मोबाइल जब स्टार्टिंग में आया तो कोई म्यूजिक नहीं थी उसमें, आहिस्ता 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 व्हाटएवर। लेकिन 90s में जब हमारे पास मोबाइल था तो उसमें कोई म्यूजिक नहीं थी कोई भी, लेकिन आहिस्ता 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 इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हुई कि अब तो कोई पिक्चर कैमरा भी आ गया, पहले स्टार्टिंग में कैमरा थोड़ी था। तो अब कैसे, अब आप सुना हमारे साथ बात, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उम्रे पे जाते हैं, कभी चले उम्रे पे मेरे साथ, लास्ट ईयर लेट ये दिसंबर में हम लोग उम्रे पे ही थे, उम्रे पे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पे उम्रा करके, उम्रा जब कर रहे थे तो खाने काबा की दीवार में आप सब जानते हैं कि बेइंतहा सवाब है अपनी बॉडी को काबे को लगा, जब भी इंशाल्लाह उम्रे पे जाना तो काबे की दीवार से अपनी बॉडी को लगा। रिवायतों में है कि काबे के पर्दे के अंदर से तुम चलेगा, कई आपको वाकयात मिलेंगे, इवन दुआए मशलूल के वाक्य में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस बंदे मोमिन को जो दुआ दी थी वो बंदा अपने आप को काबे की दीवार में ले लिया था। तो ये मासूमीन के जमाने से है कि जब बेइंतहा लोग परेशान होते थे तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप को काबे की दीवार में पर्दा, उस जमाने का पर्दा कर्टन जो काबे के ऊपर ब्लैक कवर है वो ऐसा नहीं होता, और एक पर्दा होता तो चांसेस रहते थे दीवार में हाथ आ लेते, दीवार से अपनी बॉडी को मस्क करें। आज तो नीचे से उन लोगों ने रोप लगा के टाइट कर दिया। एनी तो आप क्या करना, आप उसी के ऊपर जब जाना काबे में तो हाथ ऐसा करके अपनी बॉडी को लगा, बेइंतहा सवाब तुम्हारा जिस्म बचेगा, जहन्नम के आग से गुनाह की माफी के लिए बेहतरीन जगह अल्लाह का घर, अल्लाह का घर है। रोल माफी मांगो तो, और हुजूम रहता हर वजह का मुसलमान, हर इंसान चाहता कि काबे से मस्त हो जाए। आप जानते हैं कि काबे में हर तरफ घेरे हुए सौ सौ लोग रहे, एक के ऊपर एक रहते। हम लोग उम्रे पे थे, तवाफ कर रहे, अल्लाह बार बार तवाफ करना नसीब होते थे घर का। एक बात यहां रोक के बोलो, काबे में नमाज के सवाब से ज्यादा तवाफ का ज्यादा है। आपको हैरत हो रही, काबे का घेरे बना के सवाब नहीं, लेकिन जो सवाब तवाफ का है वो नमाज से ज्यादा काम है। अल्लाह बोलता जो जो नमाज पढ़ते पढ़ो, खुदा ना खुदा गलत मत समझो कि नमाज नहीं, नहीं वाजिबा जो पढ़ते पढ़ो, दो घंटे नमाजें पढ़ो, उसके बाद तवाफ जरूर करो। ये नहीं कि मैं उमरा नहीं करा, मैं तो खाली आया हूं, नमाजें पढ़ नमाज पढ़ लेकिन काबे में आना तो तवाफ जरूर करो। और हर मासूम की तरफ से करो, अपने मरहूमीन की तरफ से करो, अपने रिश्तेदारों की तरफ से करो, अपने बीवी बच्चों की तरफ से करो, काबे के तवाफ का सबसे ज्यादा सवाब। तो बस ये बात तो बीच में आ गई, हुआ क्या, तो ये शख्स हम लोग तवाफ कर रहे, हुजूम है काबे में, हुजूम है, और पता नहीं कौन अंदर है, उसका टेलीफोन रिंग हो तो इतनी आवाज गूंजने लगी। एक या दो बंदे थे, दोनों के रिंग हो गई, देखो अब था क्या उसके अंदर म्यूजिक में, इंडियन सॉन्ग, एक म्यूजिक के आप उसको एहसास ही नहीं हो रहा, इतने लोग हैं सब परेशान हो रहे, यार काबे में सी आवाज कैसे आ रही। मेरे मुझे मौला की वो हदीस याद आ गई, आज भी इसलिए कि काबे में टेलीफोन अलाउड है, आप देखते हैं कि वहां खड़े रहकर वो लोग बात करते, आज भी ये प्रॉब्लम है कि आपको हैरत होगी कि वहां पे और लोगों को एहसास ही नहीं है कि बाबा तुम कम अज कम साइलेंट पे करके जाओ, अगर तुम्हारे पास ये गुनाह अजीम तुम्हारे टेलीफोन में रिंगटोन को चेक करो कि इसमें और प्रॉब्लम बताओ। मिसाल के तौर पे मैंने आपको फोन किया, आपका रिंगटोन इंडियन सॉन्ग है तो आप मुझे गाना सुना दे। अरे बाबा तुम गुनाह करे तो तुम पूरी दुनिया को क्यों सुना के अपने वो गुनाह अपने ऊपर ला दे। वो बेचारा जिसने भी तुमको फोन किया उसका क्या मालूम कि कब वक्त तुम्हारे पास रिंगटोन में इंडियन सॉन्ग है म्यूजिक, और तुमको फिक्र ही नहीं। मुझे हैरत यह है कि डर नहीं है, बास गुना ऐसे छुप के करे, बास गुना खुल्लम खुल्ला करे तो और बड़ी जिद है और बड़ा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर शेव करना, ये खुल्लम खुल्ला तुम अल्लाह से जिहाद करो। मिसाल के तौर पर औरत बेपर्दा फिर भी, ये खुल्लम खुल्ला उसको खौफ ही खत्म हो गया। हु केयर्स, ये जो एटीट्यूड है ना हु केयर्स का, इसको खत्म करो। हु केयर्स का एटीट्यूड आज कम्युनिटी में कितना, वो एग्जैक्टली कहा कि मेरे बेटे के जोहर से पहले खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे 1%, ये मेरा बात है, 1% भी शर्म नहीं आएगी, बोलेगा हु केयर्स, खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे। और आज आप देखो किसान, what I'm saying, try to understand what I'm saying, इमाम के जोहर से पहले ये जो गुनाह हो रहे, जब तक unless you protect yourself from these sins, यकीन करो तुम बोलते रहो अलजल, तुम कभी नहीं जाओगे। मौला हमको मौला की नुसरत के लिए मौला उठाए, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का लेक्चर, इंशाल्लाह आइंदा भी मसाइब भी है, आइंदा जुमे को फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मौला आपका अजर अजीम दे, सुनने वालों को सलामत रखे। प्लीज ये गम के अय्याम आ रहे, अगर इमाम को राजी करना है तो उनकी दादी का मातम करो, उनकी दादी का पूछना। आज भी इमाम तड़प तड़प के रो रहा कि मेरी मजलूम दादी पर यह जुल्म अजीम हो गया। आइंदा जुमा की जो मैंने सुनी वो मैं मेरी शहजादी के शहादत के कुछ बातें बताऊंगा। मैं क्या बता सकता, कौन बसात बता सकता मादर हुसैन पे क्या क्या जुल्म हो गया, कौन बता सकता, सिर्फ अल्लाह जाने या मेरी शहजादी जाने कि मेरी मजलूम बीबी पे क्या जुल्म हो गया। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आपको खुश रखे, मौला आपको खुश रखे। दुआ करना इमाम की बारगाह में, दुआ करना इमाम की बार, इमाम की सलामती की दुआ रोज करो, रोज करो, बोला अल्लाह मेरे मौला को सलामत, अल्लाह तो मेरे मौला को सलामत रहे। और हर लम्हा ये दुआ करो कि हर लम्हा मारिफत इमाम ज़माना हो, सरकार की मारिफत ज़रूर हासिल। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को आपसे मुलाकात होगी। हालात तेज़ी से बदल रहे, ये मॉर्निंग डेज है, बार बार बोल रहा ये मॉर्निंग डेज है। इंशाअल्लाह 17 जैन तक ये तमाम मॉर्निंग डेज है। बीबी की शहादत 3 जमादिसानी को है, उससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो, रेड येलो पिंक ऐसे कपड़े भी मत पहनो। बच्चों के साथ मेरी माओ से बोल रहा, पूरी दुनिया जो सुन रही मुझे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि आप बच्चों के साथ बैठ के बीवी के नाम पे कम अज कम कुछ मत करो, अपने मासूम बच्चों को बोलो 5 दफा सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज, और पढ़ के बीवी को हदिया कर दो। तुम्हारी बीवी बीवी ज़हरा तुमको दुआ देगी, इमाम ज़माना तुमको दुआ देंगे कि तूने मेरी दादी को याद किया, मेरी दादी को गिफ्ट दिया। कोई है ऐसा जो अपनी मजलूम बीबी को गिफ्ट दे? मैं क्या बोल रहा आपसे। और आप बड़े जितने ये पन अल्लाहुमलान कतलतल बीबी जहरा, अल्लाहुमलान कतलतल मजलूम बीबी जहरा, कसरत से ये तस्बीह पढ़ो। अल्लाहुम नाम किसी का नहीं ले, नाम किसी का नहीं ले रहे, जो भी मेरी बीवी का घर, अल्लाहुमलान खतलतल मजलूम बीबी जहरा, अल्लाहुमलान खतलतल मजलूम बीबी जहरा, ये तस्बीह पढ़ो। तुम देखो हाउ यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम, हाउ यू विल गेट क्लोज टू इमाम, कैसे तुमको दुआएं मिलेंगी बीबी से, जमाने का इमाम दुआ देगा तुमको अगर तुमने बीवी के खातिर लानत की। इतनी मजलूम बीवी, इतनी मजलूम है ये शहजादी कि इनसे ज्यादा मजलूम कोई नहीं। 18 साल के सिन में मादर हुसैन के हाथ में लकड़ी आ गई थी। दोस्तों असास सिर्फ नहीं थी, बल्कि बीबी के एक हाथ कमर पे होता था, एक हाथ में असा होती थी, आखिरी लम्हात में तो दीवार का सहारा लेके मेरी बीबी जहरा चली है। दीवार का सहारा, दीवार का सहारा कौन लेता, जो बुजुर्ग हो जाता, जो ज़ईफ हो जाता। 18 साल में मेरी शहजादी का ये आलम हो गया कि हाथ में असा दीवार का सहारा लेके हुसैन की मां चल दी। उसी के बाद बैठ के चक्की भी मेरी बीबी चला रही, बच्चों को भी देख रही, बच्चों की रोटियां भी बना रही, और इसी में बीबी एक कुर्ता सी रही थी, कपड़े भी बच्चों के स्टिच करती थी। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, एक कुर्ता बीबी बैठ के सी रही थी, इन्हीं दिनों में स्टिच कर रही थी, और स्टिच करती जाती थी, रोती जाती थी, माँ है ना, माँ रोती जाती थी। शहजादी ज़ैनब ने महसूस किया कि मेरी माँ जब भी ये कुर्ता सी रही है बहुत स्टिच कर रही है, बहुत रोती है। करीब जाके कहा, अम्मा ये किसका कुर्ता है, आप इतना क्यों रो रही है? तो बस दोस्तों, मेरी शहजादी ने अपनी बेटी को ऐसा देखा, फिर बीबी ने अपने दोनों हाथ माँ के गले में डाल के प्यार करके कहा, अम्मा बताओ अम्मा ये किसका कुर्ता है, तुम इतना क्यों रो रही? तो शहजादी ने कहा, मेरी बीबी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे भाई हुसैन का कुर्ता। बीबी ज़ैनब ने कुर्ते को देखा और कहा, अम्मा ये कुर्ता तो बहुत बड़ा है, मेरा भैया बहुत छोटा है, ये कुर्ता तो बहुत बड़ा है। तो उस वक्त मेरी बीबी ने कहा कि बेटा ये कुर्ता मैं तुम्ही को दूंगी, जब भी तुम्हारा भाई ये कुर्ता तुमसे मांगे समझ जाना फिर हुसैन वापस कभी नहीं आएंगे। अजीजो 50 साल के बाद आशुरे के दिन जब पूरी सरकार हुसैन की खाली हो गई, बच्चे शहीद हो गए, अली अकबर जैसा बेटे का लाशा उठा लिया, अली असगर का मजार बना दिया, मेरा शहजादे के लिए पानी मांगा लेकिन जालिमों ने ज़िबा कर दिया, और जब मजार बना के सबसे रुखसत होकर बहन के करीब आए, आके जैसे ही बहन के करीब आए, बीबी ने कहा मेरे माँ जाए जरा करीब आ जाओ। हुसैन करीब आए तो कहा, भैया गले पे से रुमाल को हटाओ। रुमाल हटी, गुलुए हुसैन नुमाया हुआ। शहजादी ज़ैनब ने यहाँ बोसा दे के कहा, अम्मा फातिमा ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरे बच्चे के गले को प्यार करना। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा मेरे बाबा ने एक वसीयत की थी 21 रमजान की रात को, बहन बाजू से रिदा हटाओ। शहजादी ने रिदा हटाई, हुसैन ने बोसा लिया। बस दोस्तों उसके बाद इमाम ने कहा बहन वो कुर्ता दो मुझे। हुसैन ने कुर्ता मांगा, शहजादी ने कुर्ते को ला के दिया। जैसे ही कुर्ता दिया, हुसैन ने चाक चाक किया, चाक करके अपने ऊपर जब पहना, जैनब ने दोनों हाथ अपने भाई के गले में डाल दिया। कहा भैया, ये अम्मा ने कहा था कि जब कुर्ता मांगे और उसके बाद हुसैन वापस कभी नहीं आएंगे। अजीजो, यही कुर्ता जैनब लेकर शाम से वापस आई थी, मदीने में कब्र फातिमा पे कुर्ते को रख के कहा था अम्मा ये वही कुर्ता है अम्मा जो आपने दिया था, लेकिन अब इस पे तीरों के निशान है, तलवारों के निशान है, पत्थर के निशान है, नैजों के निशान है। अम्मा इस कुर्ते में मेरे भैया का खून लगा हुआ। इलाही सैयदी वो बोला, परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर। यह मजलिस, ये जो आवाज है रोने की है, अल्लाह इन पर तो रहमतों को नाज़िल फरमा। अल्लाह ये मजलिस इमाम ज़माना की बारगाह में कबूलियत तक पहुंच जाए और हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार फरजंद जहरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। परवरदिगार मेरे मौला की सलामती के सदक़े में सारे मौला के चाहने वाले जो बीमार हैं, कोविड के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो जो जहाँ जहाँ हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार बीमार करबला, बीमार मदीना, सारे बीमारों को सेहत दे दे। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अल्लाह तो हमारे गुनाह कबीरा समीरा को माफ़ कर दे, हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। हम सबको हज उमरा ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। परवरदिगार मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। हम नुसरत ऐसी करें मौला की जैसे मौला हमसे चाहते। एक सूरह फातिहा जमीय मोमिनीन व मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुश्तहदीन, मातमदार, मर्जे आलम, तमाम मुहिबान आले मोहम्मद के लिए पढ़ दें। जिसकी आज पहली रात है उसके लिए पढ़ दें, और मेरे वालिदैन के, मेरे पेरेंट्स के लिए भी पढ़ दें। बिस्मिल्लाह।